आजकल हर किसी के पास कुछ ना कुछ खास होता है, कोई हुनर, कोई जानकारी, या बस किसी चीज का जुनून।
बिल्कुल।
और सोचिए, अगर इसी चीज को दुनिया के साथ बांटकर शायद कमाई भी की जा सके, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना।
हाँ बिल्कुल। और इसी सोच को हकीकत बनाने का एक जबरदस्त तरीका है ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग
और ये सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये अपनी आवाज को डिजिटल दुनिया में पहुंचाने का एक माध्यम है।
सही कहा। तो आज हम इसी ब्लॉगिंग की दुनिया की थोड़ी गहराई में उतरेंगे।
हाँ
हमारे पास एक गाइड है, ब्लॉगिंग क्या है, संपूर्ण गाइड और कमाई के तरीके। ये इस विषय पर काफी विस्तार से जानकारी देता है। तो हमारा इरादा है कि इस गाइड से निकले जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझें।
बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि जो भी ब्लॉगिंग शुरू करने की सोच रहे हैं या शायद इसे बेहतर समझना चाहते हैं,
हाँ
उन्हें इस गाइड का सार मिल जाए, पूरा गाइड पढ़े बिना।
अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? ये ब्लॉगिंग आखिर है क्या, इस गाइड की नज़र में?
गाइड साफ कहता है ये सिर्फ डायरी लिखने जैसा नहीं है।
अच्छा,
ये अपने ज्ञान, अपने अनुभव या पैशन को ऑनलाइन शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है।
हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें शायद और भी कुछ है, सिर्फ शेयर करना।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गाइड इसे एक डिजिटल आवाज कहता है और उससे भी ज्यादा एक वैल्यू शेयरिंग मंच।
वैल्यू शेयरिंग? अच्छा,
मतलब आप सिर्फ लिख नहीं रहे बल्कि जो पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी में कुछ मूल्य, कुछ वैल्यू जोड़ रहे हैं। और इसके फायदे भी गिनाए हैं गाइड ने, जैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाना, ज्ञान बांटना, एक कम्युनिटी तैयार करना,
कम्युनिटी, हाँ,
और हाँ पैसे कमाना भी।
पैसे कमाना वो भी जरूरी है।
बिल्कुल। गाइड की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्लॉगिंग इज योर वे टू शेयर नॉलेज एंड बिल्ड इन्फ्लुएंस इन द डिजिटल वर्ल्ड।
इन्फ्लुएंस, प्रभाव बनाना।
हाँ, डिजिटल दुनिया में अपना ज्ञान बांटने और प्रभाव बनाने का आपका तरीका।
प्रभाव बनाना, ये सुनने में बड़ा लगता है। तो अगर कोई ये सफर शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए?
गाइड कहता है नीच चुनना। ये नीच क्या बला है?
नीच यानी आपका खास विषय या दायरा, और ये बहुत बहुत जरूरी कदम है।
अच्छा, क्यों इतना जरूरी है?
क्योंकि यही आपके ब्लॉग की नींव है।
गाइड एक बेहतरीन सलाह देता है, आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट,
हाँ,
आपकी विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज,
हाँ,
और लोग क्या पढ़ना चाहते हैं यानी ऑडियंस डिमांड, इन तीनों के बीच एक सही संतुलन खोजना होगा।
तीनों का संतुलन, ऐसा नहीं कि बस जो मुझे पसंद है वो लिख दिया,
नहीं बिल्कुल नहीं,
या जिसमें सिर्फ पैसा दिख रहा है उधर कूद पड़े, वो लंबे समय तक चलेगा नहीं।
ऐसा टॉपिक चुनना है जिसमें दिल भी लगे, दिमाग भी चले
और लोगों को उसकी जरूरत भी हो।
सुनने में तो ये तिकड़म भिड़ाने जैसा लगता है। कोई फॉर्मूला है इसका? सीना फॉर्मूला तो नहीं है, पर गाइड इशारा करता है कि ऐसा विषय चुने जिस पर आप लंबे समय तक, लगातार अच्छी जानकारी दे सकें, वैल्यू दे सकें।
अच्छा, लगातार।
हाँ, अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर नीश चुनेंगे तो शायद जल्दी ही थक जाएं या आपके पास लिखने को कुछ न बचे। असली मजा तभी है जब वो विषय आपकी रगों में दौड़ता हो और लोग उसे सुनना भी चाहें, तभी आप टिक पाएंगे और कामयाब होंगे।
ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपना नीश ढूंढ लिया बड़ी मेहनत से, अब आगे क्या, कहाँ लिखें, कौन सा मंच चुनें? गाइड ने वर्डप्रेस और ब्लॉगर का जिक्र किया है, क्या फर्क है इनमें?
हाँ, ये दो सबसे आम रास्ते हैं। देखिए, wordpress.org, ध्यान दीजिएगा, .org, .com नहीं।
हाँ, .org वाला।
ये आपको पूरी आजादी देता है, पूरा कंट्रोल, जैसा चाहें वैसा ब्लॉग डिजाइन करें, जितने चाहें फीचर्स जोड़ें।
सुनने में तो बढ़िया है,
लेकिन इसके लिए आपको डोमेन नाम जैसे yourblog.com और वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है।
अच्छा, खर्चा है इसमें, और शायद थोड़ा टेक्निकल भी।
हाँ बिल्कुल, थोड़ा टेक्निकल है और शुरू में खर्चा भी है।
ठीक है, और दूसरा ऑप्शन?
ब्लॉगर।
ब्लॉगर गूगल का मुफ्त प्लेटफॉर्म है, शुरू करने के लिए बेहद आसान, कोई खर्चा नहीं।
तो फिर यही क्यों नहीं, फ्री और आसान?
क्योंकि इसमें आपके हाथ बंधे होते हैं, डिजाइन के ऑप्शंस कम हैं, फीचर्स सीमित हैं, और सबसे जरूरी, कमाई के मौकों पर आपका कंट्रोल बहुत कम होता है।
अच्छा,
तो गाइड का इशारा साफ है, अगर आप शौकिया तौर पर बस ट्राई करने के लिए शुरू कर रहे हैं तो ब्लॉगर ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लेकर गंभीर हैं, एक पहचान बनाना चाहते हैं और कमाई की अच्छी संभावना देख रहे हैं, तो wordpress.org ज्यादा बेहतर है, भले ही उसमें शुरुआत में थोड़ी मेहनत और पैसा लगे।
होस्टिंग की बात आई तो गाइड ने होस्टिंगर का नाम लिया है,
कोई खास वजह?
गाइड ने होस्टिंगर का उदाहरण दिया है, हाँ शायद इसलिए क्योंकि ये नए ब्लॉगर्स के बीच काफी पॉपुलर है, दाम कम है, इस्तेमाल में आसान है।
पर ये समझना जरूरी है कि ये अकेला विकल्प नहीं है, बाजार में और भी कई अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। जरूरी ये है कि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुनें।
ठीक है, तो डोमेन ले लिया, होस्टिंग सेट हो गई, प्लेटफॉर्म चुन लिया, अब बारी आती है कंटेंट की। सिर्फ लिख देना तो काफी नहीं होगा, कोई प्लान चाहिए है ना?
बिल्कुल, सिर्फ लिखना काफी नहीं है, गाइड कंटेंट प्लानिंग पर बहुत जोर देता है।
कंटेंट प्लानिंग मतलब?
मतलब कब पोस्ट करना है, एक शेड्यूल बनाना, क्या लिखना है, टॉपिक रिसर्च करना और कैसे लिखना है ताकि वो सर्च इंजन में भी दिखे, मतलब बेसिक एसईओ का ध्यान रखना।
एसईओ।
और यहीं पर गाइड एक और पते की बात कहता है।
क्या?
कि पहले अपना लक्ष्य तय करें, क्यों कर रहे हैं ब्लॉगिंग, क्या आप सिर्फ जानकारी बांटना चाहते हैं या कमाई आपका मुख्य उद्देश्य है या फिर दोनों।
हाँ ये जरूरी है,
क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपकी कंटेंट की स्ट्रेटजी तय करेगा।
सही बात है, ये तो हुई तैयारी की बात, लेकिन ब्लॉगिंग में सफल होने के लिए कुछ खास स्किल्स भी चाहिए होंगे। गाइड किन चीजों पर फोकस करता है?
हाँ कुछ बुनियादी हुनर तो चाहिए ही। गाइड ने लिस्ट किया है, जैसे टॉपिक ढूंढने के लिए रिसर्च करना आना चाहिए,
रिसर्च, हाँ,
एसईओ की बेसिक समझ होनी चाहिए, अपने पढ़ने वालों को, अपनी ऑडियंस को समझना कि उन्हें क्या चाहिए,
ऑडियंस को समझना,
और एक बहुत जरूरी चीज, समय का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट। ब्लॉगिंग में वक्त लगता है, ये कोई जल्दी वाला काम नहीं है।
और इन सब में सबसे जरूरी स्किल कौन सी है गाइड के हिसाब से?
गाइड के हिसाब से सबसे ऊपर है क्वालिटी राइटिंग, गुणवत्ता वाला लेखन।
क्वालिटी राइटिंग?
हाँ, ऐसा लिखना जो लोगों को जोड़े रखे, उन्हें कुछ नया सिखाए या उनकी कोई समस्या सुलझाए। देखिए जानकारी तो आजकल कहीं भी मिल जाती है।
हाँ वो तो है,
लेकिन उसे दिलचस्प बनाना, समझने लायक बनाना, वही असली कला है।
सही कहा। अच्छा स्किल जरूरी है, लेकिन आजकल बिना सही औजारों मतलब टूल्स के काम कहाँ चलता है? मैंने सुना है एनालिटिक्स के लिए गूगल का टूल काफी चलता है।
हाँ बिल्कुल।
स्रोत और किन मददगार टूल्स की बात करता है?
आपने बिल्कुल सही सुना, गूगल एनालिटिक्स तो बेहद जरूरी है, ये समझने के लिए कि आपके ब्लॉग पर कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या पढ़ रहा है।
अच्छा।
इसके अलावा गाइड कुछ और टूल्स का जिक्र करता है, जैसे वर्डप्रेस तो प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन उसे ठीक से इस्तेमाल करना, कस्टमाइज करना, वो भी एक स्किल है। फिर कैनवा है, सुंदर तस्वीरें और ग्राफिक्स बनाने के लिए, आजकल विजुअल्स बहुत मायने रखते हैं।
हाँ, तस्वीरों के बिना तो मजा ही नहीं आता।
बिल्कुल। फिर ग्रामरली जैसे टूल है जो लिखते समय व्याकरण और स्पेलिंग की गलतियाँ ठीक करने में मदद करते हैं, साफ सुथरा लेखन भरोसेमंद लगता है।
ठीक है।
और फिर है एसईओ प्लगइन्स जैसे रैंक मैथ या योस्ट एसईओ, ये वर्डप्रेस में लगते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने आर्टिकल को सर्च इंजन के लिहाज से कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं।
ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है? यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, मतलब सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुँचाना भी तो है।
सही पकड़ा।
तो हाई क्वालिटी आर्टिकल कैसे लिखें जो एसईओ फ्रेंडली भी हो, क्या कहता है गाइड?
ये बिल्कुल सही सवाल है और गाइड इसे एक प्रक्रिया की तरह समझाता है। पहला कदम, अपने रीडर को समझें।
रीडर को समझें?
हाँ, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं। दूसरा, उस टॉपिक पर गहराई से रिसर्च करें। तीसरा, अपने आर्टिकल को एक साफ ढांचा दें।
ढांचा मतलब?
मतलब एक आकर्षक इंट्रोडक्शन, फिर जानकारी से भरपूर बॉडी जिसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में बांटें ताकि पढ़ने में आसानी हो, और आखिर में एक दमदार निष्कर्ष।
हेडिंग जरूरी है।
बहुत जरूरी, न सिर्फ पढ़ने में आसानी के लिए बल्कि एसईओ के लिए भी।
अच्छा, और तस्वीरों या चार्ट्स का क्या रोल है?
बहुत बड़ा रोल। गाइड कहता है कि टेबल, इमेज, इन्फोग्राफिक्स जैसे विजुअल कॉन्टेंट न सिर्फ आर्टिकल को आकर्षक बनाते हैं,
हाँ,
बल्कि मुश्किल जानकारी को भी आसान कर देते हैं। साथ ही अपने ही ब्लॉग के दूसरे मिलते जुलते आर्टिकल्स को लिंक करना, जिसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं।
इंटरनल लिंकिंग।
और बाहर की भरोसेमंद वेबसाइट्स को लिंक करना, यानी एक्सटर्नल लिंकिंग, ये भी अच्छा माना जाता है। गाइड की एक लाइन है, अ वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल बैलेंसेज एसईओ एंड यूजर एक्सपीरियंस परफेक्टली।
मतलब एसईओ और पढ़ने वाले का अनुभव, दोनों का ख्याल रखना है।
बिल्कुल, परफेक्ट बैलेंस।
तो ये हुई आर्टिकल को पढ़ने लायक और समझने लायक बनाने की बात। अब आते हैं असली चीज पर, एसईओ पर, ताकि लोग इसे गूगल पर ढूंढ पाएं। ये कैसे काम करता है, स्रोत इसके क्या राज बताता है?
SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, इसका मतलब सिर्फ गूगल को खुश करना नहीं है।
अच्छा,
इसका असली मतलब है ये पक्का करना कि सही लोग, जिन्हें वाकई आपकी जानकारी की जरूरत है, वे आपको आसानी से ढूंढ सकें।
सही लोगों तक पहुंचना।
हाँ, गाइड कुछ मुख्य बातें बताता है इसके लिए। पहला है कीवर्ड रिसर्च।
कीवर्ड रिसर्च,
पता लगाएं कि लोग आपके टॉपिक से जुड़े कौन से शब्द या सवाल गूगल पर सर्च करते हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं। फिर इन कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में सही जगहों पर इस्तेमाल करें, टाइटल में, हेडिंग्स में, टेक्स्ट में। लेकिन ध्यान रहे, ठूसना नहीं है, नेचुरल लगना चाहिए।
ठीक है, नेचुरल तरीके से।
दूसरा है ऑन पेज SEO। ये आपके आर्टिकल के अंदर की चीजें हैं।
जैसे
टाइटल कैसा है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, वो जो गूगल सर्च रिजल्ट में दिखता है, हेडिंग सही है या नहीं, URL छोटा और साफ है या नहीं, तस्वीरों में ऑल्ट टेक्स्ट डाला है या नहीं, ये सब।
अच्छा, ये सब आर्टिकल के अंदर ही होता है।
हाँ, फिर आता है ऑफ पेज SEO। ये आपके ब्लॉग के बाहर की गतिविधियां हैं।
बाहर की मतलब?
इसमें सबसे जरूरी है दूसरी अच्छी और भरोसेमंद वेबसाइटों से आपके ब्लॉग के लिए लिंक मिलना। इसे बैकलिंक कहते हैं।
बैकलिंक सुना है इसके बारे में?
हाँ, ये गूगल की नजर में आपकी प्रतिष्ठा बनाता है। सोशल मीडिया पर शेयर करना भी इसमें मदद करता है। और चौथा है टेक्निकल SEO। ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं,
टेक्निकल, ये क्या?
जैसे आपकी वेबसाइट तेजी से खुलती है या नहीं। आजकल लोग इंतजार नहीं करते।
सही बात है।
मोबाइल पर ठीक दिखती है या नहीं। मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। क्या गूगल उसे आसानी से समझ पा रहा है, इसके लिए साइट मैप बनाना होता है।
बापरे, SEO में तो काफी कुछ है ध्यान रखने को। ये सब एकदम से करना शायद मुश्किल लगे।
हाँ, शुरुआत में लग सकता है।
गूगल में रैंक करने के लिए गाइड कोई आसान कदम सुझाता है?
गाइड इसे सरल रखता है। देखिए, अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर करें। ये गूगल का फ्री टूल है।
ठीक है।
साइट मैप बनाकर सबमिट करें ताकि गूगल आपके सारे पेज देख सकें, और अपने कंटेंट को ताज़ा और अपडेटेड रखें।
और सब्र रखें।
बिल्कुल, रैंकिंग एक रात में नहीं मिलती, इसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है।
धैर्य और मेहनत। और फिर आता है वो सवाल पैसे कमाने का। ब्लॉगिंग से कमाई कैसे होती है? क्या ये वाकई मुमकिन है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में?
बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन गाइड साफ करता है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। गाइड कहता है कि लगातार मेहनत और रीडर्स को वैल्यू देने से ही कमाई के रास्ते खुलते हैं।
तरीके क्या हैं?
कुछ मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, एफिलिएट मार्केटिंग।
एफिलिएट मार्केटिंग, ये क्या है?
आप दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट या सर्विस अपने ब्लॉग पर प्रमोट करते हैं। जब कोई आपके दिए हुए लिंक से कुछ खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये बहुत पॉपुलर तरीका है।
अच्छा, और
दूसरा है विज्ञापन। आप अपने ब्लॉग पर विज्ञापन दिखा सकते हैं। गूगल एडसेंस इसका सबसे आम जरिया है।
गूगल एडसेंस?
हाँ, जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आप सीधे कंपनियों से स्पॉन्सर पोस्ट या बैनर एड के लिए भी बात कर सकते हैं।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा है डिजिटल प्रोडक्ट बेचना। अगर आपके पास किसी विषय में गहरी जानकारी है तो आप अपनी ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या टेम्पलेट बनाकर बेच सकते हैं। इसमें मार्जिन ज्यादा होता है।
अपनी चीजें बेचना।
और चौथा है फ्रीलांस सेवाएं देना। आपका ब्लॉग आपकी विशेषज्ञता दिखाता है।
अच्छा।
हाँ, आप इसके जरिए लेखन, कंसल्टिंग या अपनी नीश से जुड़ी कोई और सर्विस ऑफर कर सकते हैं।
गाइड ने वो ट्रैवल ब्लॉगर का उदाहरण दिया था, 50,000 से 1,00,000 रुपए महीना, वो भी सिर्फ अफिलिएट से। क्या ये हकीकत है?
देखिए, गाइड ये उदाहरण एक संभावना दिखाने के लिए देता है।
अच्छा, सिर्फ संभावना?
हाँ, ये आंकड़े हासिल किए जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, सही रणनीति चाहिए और एक वफादार ऑडियंस बेस चाहिए। ये तुरंत नहीं होता। गाइड की वो बात फिर याद दिलाऊंगी, कंसिस्टेंसी और वैल्यू क्रिएशन ही लॉन्ग टर्म अर्निंग का सीक्रेट है। लगातार अच्छा कंटेंट देना और रीडर्स के लिए उपयोगी बने रहना, यही लंबे समय की कमाई का राज है।
मतलब कमाई ट्रैफिक से ज्यादा वैल्यू पर निर्भर करती है,
काफी हद तक, और इस बात पर कि आपका चुना हुआ तरीका क्या है और आपके दर्शक कितने इंगेज्ड हैं। सिर्फ ट्रैफिक नंबर काफी नहीं है।
ये तो हुई कमाई की बात, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ब्लॉग सही दिशा में जा रहा है या नहीं? उसकी ग्रोथ कैसे नापें?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। यहीं पर एनालिटिक्स काम आते हैं।
गूगल एनालिटिक्स?
हाँ, गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल बताते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, ट्रैफिक सोर्स क्या है, गूगल सर्च, सोशल मीडिया, कोई और वेबसाइट।
ठीक है।
फिर लोग आपके ब्लॉग पर आकर क्या कर रहे हैं, यूजर बिहेवियर कैसा है, कौन से आर्टिकल सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, लोग कितनी देर रुक रहे हैं, कितने लोग पहला पेज देखते ही वापस चले जाते हैं, जिसे बाउंस रेट कहते हैं।
बाउंस रेट, हाँ।
और क्या आपके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, क्या लोग न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रहे हैं, एफिलिएट लिंक पर क्लिक कर रहे हैं?
अच्छा, इस सब डेटा से पता चलेगा?
बिल्कुल, इस डेटा को समझकर आप जान सकते हैं कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं।
एक सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा था और शायद बहुतों के मन में आता होगा, फ्री ब्लॉगिंग जैसे ब्लॉगर पर,
हाँ,
उससे शुरू करें या पेड वाला चुने, मतलब wordpress.org और होस्टिंग वाला?
हाँ,
अक्सर लोग इसी दुविधा में रहते हैं।
हाँ, ये बहुत आम सवाल है।
गाइड क्या सलाह देता है इस पर?
गाइड दोनों के फायदे नुकसान बताता है। देखिए, लागत की बात करें तो फ्री वाला मुफ्त है।
हाँ।
पेड वाले में, जैसा गाइड में अंदाजा दिया है, हर महीने कुछ 100 से 1000 रुपए का खर्च आ सकता है होस्टिंग और डोमेन का।
ठीक है। और कंट्रोल?
फ्री में कंट्रोल बहुत कम है, पेड में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। आप जैसा चाहे वैसा ब्लॉग बना सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं।
और SEO और कमाई के लिहाज से?
पेड ब्लॉगिंग में SEO के बेहतर विकल्प होते हैं, ज्यादा कंट्रोल होता है और कमाई की संभावनाएं भी असीमित हैं। फ्री प्लेटफॉर्म्स पर यह सब सीमित हो सकता है।
तो फिर नए ब्लॉगर के लिए क्या बेहतर है? वर्डप्रेस ज्यादा लचीला है, ये तो ठीक है।
हाँ,
लेकिन क्या एक नए ब्लॉगर के लिए शुरुआत में ज्यादा जटिल नहीं हो जाएगा, खासकर जब होस्टिंग वगैरह भी मैनेज करना पड़े?
ये एक वाजिब चिंता है, बिल्कुल है। गाइड का झुकाव थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ है।
अच्छा।
वो सलाह देता है कि अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये आपके लिए है या नहीं, तो फ्री से शुरू करें, कोई हर्ज नहीं।
ठीक है।
लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी जटिलता झेलकर पेड प्लेटफॉर्म यानी wordpress.org पर जाना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
मतलब शुरू में सीखने में मेहनत लगेगी?
हाँ, सीखने में थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जो आजादी और मौके मिलेंगे वो कहीं ज्यादा होंगे। और गाइड ये भी याद दिलाता है कि गूगल में रैंक होने में आमतौर पर 3 से 6 महीने लग सकते हैं, तो सब्र रखना बहुत जरूरी है।
सब्र और मेहनत। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, इस गाइड से सीखने वाली मुख्य बातें क्या रहीं?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉगिंग आज के दौर में अपनी बात कहने, अपना ज्ञान बांटने और हाँ, कमाई करने का भी एक बहुत ताकतवर जरिया है।
बिल्कुल।
लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें एक प्लान लगता है, सही नीश चुनना, लगातार दमदार कंटेंट तैयार करना,
क्वालिटी कंटेंट,
हाँ क्वालिटी कंटेंट, SEO को समझना और उसे सही से लागू करना, ये सब जरूरी है।
और वो मैराथन वाली बात, वो मुझे याद रह गई। गाइड कहता है, ब्लॉगिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, वैल्यू एंड परसिस्टेंस आर योर बेस्ट एलाइज।
एग्जैक्टली।
ब्लॉगिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें टिके रहना और लगातार वैल्यू देना ही सबसे जरूरी साथी हैं।
बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जो गाइड से ही निकलती है।
हाँ।
गाइड बार बार वैल्यू बनाने और कम्युनिटी बनाने पर जोर देता है, तो किसी भी नए या मौजूदा ब्लॉगर के लिए ये सवाल अहम हो जाता है, आप सिर्फ पैसा कमाने के अलावा किस तरह की वैल्यू बनाना चाहते हैं?
किस तरह की वैल्यू?
हाँ, आप अपने खास रीडर्स के समूह को ऐसा क्या अनोखा नजरिया या मदद दे सकते हैं जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता? ये सिर्फ कंटेंट बनाने से आगे की बात है, ये एक गहरा रिश्ता बनाने और सच में किसी की मदद करने के बारे में सोचने का मौका है।
माके, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपने ब्लॉग से दुनिया पर क्या छाप छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ कमाई से आगे बढ़कर। उम्मीद है इस गाइड के इस विश्लेषण ने ब्लॉगिंग की तस्वीर को हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा और साफ किया होगा।
उम्मीद तो यही है।